हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी सीक्रेट एजेंसी ऑफिस में अमन को अपना बयान दे रही थी। वहां उसने अमन को बताया कि कैसे उसने अनजाने में विधिक और हरलीन बुआ की बातें सुन ली थीं। उनके बातों से आंशी को पता चला विधिक ने ही उसके तीनों दोस्तों को मारा है और वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उसे सब बताते हुए आंशी रोने लगी। अमन ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। सब ठीक है, अब तुम उसके पास नहीं हो। क्या मेरे दोस्तों को कभी इंसाफ मिल पाएगा? मुझे तो पता तक नहीं था कि उनकी जान उस इंसान ने ली है जो दिन रात मेरे साथ रहता था, जिससे मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी, आंशी ने भावुक होकर कहा। क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, अमन ने उसके हाथ को सहलाकर कहा। अच्छा बताओ, सब पता चलने के बाद तुमने क्या किया? कहीं तुम्हारे दोस्तों की तरह तुमने तो बेवकूफ़ी नहीं की ना, जो सीधे जाकर विधिक से सब पूछ लिया? आंशी ने ना में सिर हिलाया और कहा, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी और सीधे अपने कमरे में चली गई। हैरी, प्रिंस और सृष्टि के साथ जो भी हुआ उसके बारे में मुझे मलिक ने बताया था। उसके बाद आंशी उसे आगे की कहानी सुनाने लगी। विधिक का सारा सच जानने के बाद आंशी वापस अपने कमरे में आई। वो बाथरूम में थी और जोर जोर से रोने लगी। उसने शॉवर चालू कर लिया ताकि विधिक को उसके रोने की आवाज़ सुनाई ना दे। वही हरलीन बुआ से बात खत्म करने के बाद विधिक वापस कमरे में आया। उसने बाथरूम में पानी की आवाज़ सुनी तो समझ गया आंशी अंदर होगी। थोड़ी देर पहले तो तुम्हें इतनी जल्दी हो रही थी, अब बाथरूम में क्या कर रही हो? चलो अब जल्दी बाहर आओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा, विधिक बाथरूम के दरवाजे के बाहर आकर बोला। और हाँ, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। उसकी आवाज़ सुनकर आंशी ने अपना मुंह कस के बंद कर लिया। खुद को रोने से रोकने का बस यही तरीका उसके पास बचा था। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसका कोई जवाब नहीं आने पर विधिक को थोड़ी घबराहट होने लगी। वो बोला, क्या हुआ आंश, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस 5 मिनट दो आती हूँ, आंशी ने जैसे तैसे खुद पर काबू करके सामान्य तरीके से जवाब दिया। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और खुद को नॉर्मल करने लगी। बस 5 मिनट है मेरे पास, मुझे उसे बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना है कि मुझे सब पता चल गया है। बस उसे अपने पास आने से रोकना है, पर कैसे रोकूंगी? मैंने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था, सोचते हुए आंशी फिर फक फक कर रो पड़ी। वो खुद को जल्दी से सामान्य करके बाहर आई। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। विधिक उसके पास आकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? थोड़ी देर पहले तो तुम नॉर्मल थी और अब तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आंशी ने हाँ में सिर हिलाया और हल्की मुस्कुराहट दी। वो विधिक के गले लग गई ताकि वो उसके चेहरे के भावों को पढ़ ना सके। बस थोड़ी नर्वस हो रही थी, फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लग रहा था। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बटरफ्लाई, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। मैंने बुआ को हमारी शादी के बारे में बता दिया है और वो कल शाम तक सारी अरेंजमेंट करा देगी। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मेरी बेबी में कुछ मांगा है और मैं उसे ना दूं। विधिक की बात सुनकर आंशी की आंखों से आंसू लुढ़क गए। विधिक की दुनिया एक ऐसा कुआं था जिसमें वो जानबूझकर कूदी थी। मैंने अपनी जिद के चलते तुम्हें भी परेशान कर दिया ना, मैं मजाक कर रही थी, हम थोड़ा रुक कर शादी कर लेंगे, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आंशी उससे अलग होकर बोली। तुम्हारे लिए परेशानी नहीं उठाऊंगा तो किसके लिए उठाऊंगा? तुम मत घबराओ, सब अरेंजमेंट हो गई है, चलो हम उस पर फोकस करते हैं जो करने वाले थे। अपनी बात खत्म करते ही विधिक आंशी को किस करने लगा। पहली बार उसके करीब आने पर वो कांप रही थी। विधिक ने उसे छुआ तो महसूस हुआ आंशी के बुखार था। वो उससे अलग होकर बोला, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है टेंशन मत लिया करो, परेशानी में तुम्हें फीवर तक हो जाता है, जब मैंने बोल दिया कि मैं सब संभाल लूंगा फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। कल का दिन मेरे लिए खास होने वाला है, इतनी नर्वसनेस होना तो जायज है ना? नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस होने की इजाज़त नहीं है, तुम परेशान होती हो तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है और मैं ये नहीं चाहता। चलो अब जो भी करने वाले थे वो शादी के बाद करेंगे, तुम सो जाओ और मैं पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखूंगा। विधिक ने आंशी को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। वो उसके पास बैठकर उसके उसके बालों में हाथ घुमा रहा था। डर के मारे आंशी की हालत खराब हो रही थी और उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी तब विधिक पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करता था। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, इसने मुझे भी मार दिया तो? नहीं, ये मेरी जान नहीं लेगा, पर मुझे हमेशा के लिए अपने पास बंदी जरूर बना लेना। काश मैंने तुम्हारे अच्छे चेहरे के बजाय दिल को देखा होता। हैरी और प्रिंस जो बोल रहे थे उस पर एक बार गौर कर लिया होता। मेरे दोस्त मुझसे बचाने के लिए अपनी जान तक गवा बैठे, मैं उनकी मौत को यूं जाया नहीं होने दूंगी। कभी सोचा नहीं था इतना प्यार करने के बाद तुमसे इतनी नफरत कर बैठूंगी। विधिक, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हें कहा था मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस उसी का फायदा उठाकर तुम मेरे पास आए। आंशी के मन में काफी कुछ चल रहा था। सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। विधिक ने उसे लोते हुए देखा तो कहा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही है, तुम्हें ठंड लग रही है क्या जो तुम कांप रही हो? विधिक उसे बीमार देखकर परेशान हो गया। उसने आंशी का फीवर चेक किया तो वो 104 के करीब था। मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए परेशान हो गए तो मुझे और बुरा लगेगा और मेरी तबीयत और भी खराब होगी। कल का दिन हम दोनों के लिए बड़ा है, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, आंशी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहते हुए वो वहीं आंशी को अपनी बाहों में लेकर सो गया। आंशी उसके सोने का इंतजार कर रही थी। वो नहीं जानती थी उस समय उसे क्या करना चाहिए, ना ही वो इस परिस्थिति में थी कि कुछ कर सकती थी। फिर भी वो विधिक के सोने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में विधिक नींद के आगोश में था। उसके सोते ही आंशी ने जैसे तैसे हिम्मत करके उसे खुद की बाहों से आज़ाद कराया और कमरे के बाहर निकली। उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बीमार होने की वजह से वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। जैसे तैसे कर वो उस घर से बाहर निकली। आंशी आगे का रास्ता नहीं जानती थी, फिर भी बीमारी की स्थिति में बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आंशी को वहां से भागते हुए लगभग 1 घंटे हो गए थे। वो बहुत थक गई थी। जब उसे लगा कि वो विधिक के घर से काफी दूर तक आ गई है, तब आगे गार्डन देखकर वो एक बेंच पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठी। भगवान जी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरी वजह से मेरे दोस्तों की जान चली गई, मैं इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी, ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ विधिक? आंशी वहां बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और वो बेहोश हो गई। वो नादान थी और इस बात से अनजान भी कि वो विधिक के घर से तो निकल गई है, लेकिन साथ ही वो उस सुरक्षा घेरे से भी बाहर आ गई थी।
मलिक पिछले 6 महीने से आंशी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वो उसके हर मूवमेंट पर नज़र रखता था और उस हिसाब से उसने आंशी को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसे बस एक मौके का इंतज़ार था जब आंशी विधिक के साथ ना हो। आज उसे वो मौका मिल गया था। आंशी वहां से भागी तो उसके एक आदमी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया। वो बेंच पर बेहोश पड़ी थी और मलिक उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। लगता है बटरफ्लाई अपने फूल से दूर चली आई है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, मलिक मुस्कुराकर बोला। फिर उसने अपने एक आदमी से कहा, इसे अपने अड्डे पर लेकर चलो, काफी हिसाब किताब पूरे करने हैं इससे। आंशी को लगभग 2 घंटे बाद होश आया। वो एक अंधेरी जगह पर थी जहां उसे किसी कुर्सी से बांधा गया था। आंशी की आंख और मुंह पर कोई पट्टी नहीं थी। कोई है यहां? उसने जोर से आवाज लगाई। उसके आसपास कोई नहीं था। किसी की आवाज ना आने पर आंशी डर के मारे रोने लगी। वही कमरे से बाहर एक जगह पर मलिक अपने आदमियों के साथ उस पर नजर बनाए हुए था। जब उसे उसके होश में आने का पता चला तो वो तुरंत 2 आदमियों के साथ आंशी के पास पहुंचा। देखो तो हमारी शहजादी होश में आ गई है, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है बटरफ्लाई, मलिक हंसते हुए उसके पास आया। तुम्हें विधिक ने मुझे पकड़ने के लिए भेजा है ना, उसे पता चल गया होगा कि मुझे उसका सारा सच पता चल गया है, इसलिए उसने मुझे किडनैप करा लिया ताकि मैं भाग ना पाऊं, आंशी ने पूछा। नहीं, विधिक तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इतनी बुरी कंडीशन में रखेगा? वैसे रख भी सकता है, एक नंबर का जल्लाद है वो लड़का। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उसे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है और कभी पता चलेगा भी नहीं। फिर तुम किसके कहने पर मेरे साथ ये सब कर रहे हो, आंशी ने हैरानी से पूछा। अच्छा, किसी के कहने की जरूरत है क्या? मलिक उसके पास आया और अपने हाथ से आंशी का मुंह पकड़कर बुरी तरह दबा दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हारी वजह से वो बदल रहा है। बहुत मेहनत की है हमने इतने साल, इतनी आसानी से उसे नहीं बदलने दूंगा। मैं दूर चली जाऊंगी, कभी तुम लोगों के सामने नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो, आंशी रोते हुए बोली। दूर तो तुम्हें जाना होगा, वो भी इस दुनिया से दूर, वरना विधिक राणा तुम्हें ढूंढ लेगा। पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब चीजें फील करवाऊं जो तुम्हारा प्यारा विधिक दूसरे लोगों के साथ करता था। तुम्हें भी तो पता चले कि वो इंसान कितना बेरहम है। आई वॉन्ट कि तुम उसका असली चेहरा देखो, वो सब महसूस करो जो वो दूसरों को करवाता है, मलिक बेरहमी से बोल रहा था। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम भी तो उसके साथ हो, तुम दोनों वो सब करते हो जो लोगों को तकलीफ देता है। तुम लोगों ने मेरे दोस्तों तक को मार दिया। अच्छा, हाँ, दोस्तों से याद आया, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ जानूं। तुम्हें पता होना चाहिए उनकी जान कैसे गई। सबसे पहले सृष्टि से शुरू करते हैं। तुम्हारी दोस्त को उसके बारे में पता चल गया था। सच में एक नंबर की बेवकूफ थी जो बात करने के लिए उसके कमरे तक चली आई। विधिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। दोनों के बीच में बहुत झड़प हुई। तुम सोच भी नहीं सकते हो, विधिक ने तुम्हारी फ्रेंड के साथ मारपीट की। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, आंशी बीच में ही चिल्लाकर बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विधिक ये सब कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सबूत के तौर पर तुम्हें सारी फुटेज दिखा दूंगा। उसने तुम्हारी दोस्त के सामने दो ऑप्शन रखे। एक ऑप्शन में उसकी जान जानी थी और दूसरे ऑप्शन में उसकी और उसकी पूरी फैमिली की। तुम्हारी फ्रेंड ने बहुत होशियारी की और उसकी वजह से ना केवल वो बल्कि उसका पूरा परिवार मारा गया। इन सब की मौत एक्सीडेंटल दिखाई गई। मलिक ने आंशी के सामने लैपटॉप ऑन किया जिसमें उसके कमरे की फुटेज थी। वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब आंशी के सामने विधिक का असली चेहरा आए। उसके बाद उसने हैरी और प्रिंस को भी मार दिया और फिर उनकी मौत को एक्सीडेंटल दिखा दिया। वैसे तुम्हारे दोस्तों को काफी फायदा हुआ, वरना वो इतनी आसानी से किसी की जान नहीं लेता, उनके साथ बहुत टॉर्चर करता है। मैं उसका गवाह हूँ और अब तुम्हें भी वो सब टॉर्चर झेलना पड़ेगा जो वो बाकियों के साथ करता है। सच में इसमें बहुत मजा आने वाला है, काश विधिक भी साथ होता। मलिक क्रूरता से हंस रहा था। उसकी एक एक बात आंशी के दिल में दर्द पैदा कर रही थी और ये बात वो अच्छे से जानता था। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा बटरफ्लाई, तुम्हारे हर एक पंख को नोच डालूंगा। वो आंशी के पास आया और उसके गाल पर हाथ फहराया। उसे महसूस हुआ आंशी के बुखार है। तब वो हंसकर बोला, लो, इसकी हालत तो पहले से ही खस्ता है, टॉर्चर झेलना तो दूर, ये तो सुनकर ही मर जाएगी। मलिक की बातें सुनकर आंशी की आंखों में आंसू थे। डैश आंशी एजेंसी के ऑफिस में अमन को सब कुछ बता रही थी। उस दिन के बारे में सोचकर वो कांपने लगी। अब तक अमन ने आंशी का खुशमिजाज चेहरा ही सामने देखा था। आज सारा सच सुनने के बाद उसकी आंखें भी नम थीं। ये आधा सच था जो सुनकर उसकी ये हालत हो रही थी, जबकि आंशी जो आगे बताने वाली थी वो तो और भी बदतर था।